एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। तो आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने कह सकते हैं डेढ़ सदी से भी ज्यादा समय से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है।
हाँ, सवाल करने और शायद अपनी जिंदगी को थोड़ा अलग ढंग से देखने के लिए उकसाया है। हेनरी डेविड थॉरो की वॉल्डन।
बिल्कुल, वॉल्डन ये सिर्फ मतलब कागज पर छपे शब्द नहीं है।
नहीं, ये तो असल में एक अनुभव है। मैसाचुसेट्स के वॉल्डन तालाब के किनारे बिताए गए वो कितने थे, 2 साल 2 महीने और 2 दिन।
जी हाँ, 2 साल 2 महीने 2 दिन उनका पूरा लेखा जोखा है, एक तरह का प्रयोग जो ये पूछता है भाई असल में जीने का मतलब क्या है।
और कमाल की बात तो ये है कि ये किताब लिखी गई थी 1854 में, है ना?
हाँ, 1854।
लेकिन आज भी मुझे तो लगता है शायद आज ज्यादा रेलेवेंट है।
बिल्कुल, आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, चीजें जमा करने की होड़ है और जैसे हम प्रकृति से कटते जा रहे हैं,
हाँ,
उसे देखते हुए तो थोरो के सवाल और तीखे लगते हैं
और ज्यादा चुभते हैं। सही कहा, एक तरह से आईना दिखाती है ये किताब। क्या हम वाकई जी रहे हैं या बस एक रूटीन जी रहे हैं? चलिए इसी सवाल के साथ थोरो की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं, पर पहले जरा इस अनोखे लेखक के बारे में बात कर लें। हेनरी डेविड थोरो, 1817 से 1862।
जी, थोरो कोई आम लेखक नहीं थे। वो एक प्रकृतिवादी थे, निबंधकार, कवि और दार्शनिक भी, मतलब कई टोपियां पहनते थे एक साथ।
हाँ, और हार्वर्ड से पढ़े थे, रैल्फ वाल्डो इमर्सन जैसे बड़े विचारकों के दोस्त थे और उस जमाने का जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट आंदोलन था उससे जुड़े थे।
ट्रांसेंडेंटलिस्ट?
हाँ, ये वो लोग थे जो मानते थे कि ज्ञान सिर्फ तर्क या बाहरी अनुभव से नहीं आता,
बल्कि हमारी अंदर की आवाज, हमारी इंट्यूशन, हाँ, और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव से भी मिलता है। ये लोग व्यक्ति की अपनी एक दिव्यता, उसकी आजादी, इस पर बहुत जोर देते थे।
और थोरो की सबसे खास बात क्या लगती है आपको?
मेरे ख्याल से ये कि वो सिर्फ सोचते नहीं थे, मतलब सिर्फ विचारों की दुनिया में नहीं रहते थे, वो अपने दर्शन को जीते थे।
हाँ, ये वॉल्डन वाला प्रयोग इसी का सबूत है।
बिल्कुल, वॉल्डन तालाब के किनारे कुटिया बनाकर रहना कोई शौकिया काम नहीं था। ये उनके लिए अपने विचारों को असल जिंदगी में परखने का एक गंभीर, एक ईमानदार प्रयास था।
और उनके पास सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, है ना? मतलब क्लासिक्स, पूर्वी दर्शन, प्रकृति विज्ञान, ये सब तो था ही।
हाँ, वो तो था ही, लेकिन साथ ही वो एक कुशल सर्वेक्षक भी थे, बढ़ई का काम भी जानते थे, मतलब हाथ और दिमाग दोनों चलते थे उनके, प्रैक्टिकल आदमी थे।
और उनका असर सिर्फ लिखने पढ़ने तक नहीं रहा, वो टैक्स देने से मना करने वाली घटना।
हाँ बिल्कुल, उन्होंने अमेरिकी सरकार की दास प्रथा और मेक्सिको युद्ध की नीतियों का विरोध किया था
और इसके लिए जेल भी गए।
हाँ, छोटी सी सजा थी, पर उसी अनुभव से निकला उनका वो मशहूर निबंध सविनय अवज्ञा या सिविल डिसोबीडियंस।
और उसका आइडिया कितना पावरफुल था कि अगर सरकार अन्याय कर रही है तो नागरिकों का हक है, बल्कि कर्तव्य है कि शांति से उसका विरोध करें।
जी, और इसी आइडिया ने आगे चलकर महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लोगों को कितनी प्रेरणा दी। तो हम एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जिसके जीने के तरीके और विचारों ने दुनिया पर बहुत गहरी छाप छोड़ी है।
बिल्कुल, तो अब आते हैं उनकी सबसे जानी मानी किताब वॉल्डन पर। अगर इसे एक लाइन में कहना हो क्या कहेंगे?
हाँ, मुश्किल है एक लाइन में कहना, बट शायद ये कह सकते हैं कि ये सादगी, आत्मनिर्भरता और प्रकृति के साथ एक गहरे तालमेल से जीने का जो थोरो का प्रयोग था, उसका एक बहुत ही पर्सनल और दार्शनिक बयान है।
कहानी भी है और एक तरह का गाइड भी।
हाँ, एक तरह का मैनुअल भी, जो पूछता है कम में ज्यादा कैसे जिए, जिंदगी को आसान कैसे बनाए।
और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो तो बहुत स्ट्रांग है। थोरो कहते हैं कि ज्यादातर लोग उनके जमाने में भी और शायद आज तो और भी ज्यादा,
हाँ,
वो शांत हताशा में जी रहे हैं।
क्वाइट डेस्पिरेशन।
क्या मतलब है इसका, शांत हताशा?
मतलब अंदर से दुखी हैं, खालीपन महसूस करते हैं, लेकिन चुपचाप सहते रहते हैं। समाज क्या कहेगा या बस आदत पड़ गई है तो जिंदगी घसीट रहे हैं।
और वो मानते थे कि लोग परंपराओं, संपत्ति, पैसे, इन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे हैं
और इस दौड़ में खुद से दूर हो रहे हैं, अपनी आत्मा से, जिंदगी की असली खुशियों से।
बिल्कुल, तो थोरो का मकसद था हमें इस एक तरह की नींद से जगाना, इस आरामदायक लेकिन शायद खोखली जिंदगी पर सवाल उठाने के लिए कहना।
तो ये किताब उन सब के लिए है जो कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि यार जिंदगी में कुछ और होना चाहिए,
जो इस ढर्रे से खुश नहीं है
और एक ज्यादा सच्चा, ज्यादा मीनिंगफुल जीवन चाहते हैं।
हाँ, और इसकी बनावट भी बड़ी दिलचस्प है। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही किताब आगे बढ़ती है। गर्मी से शुरू होती है, फिर पतझड़, सर्दी और आखिर में वसंत,
एक पूरा साइकिल। तो चलिए इस यात्रा के कुछ अहम पड़ावों पर रुकते हैं। पहला ही अध्याय है अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, और ये सबसे लंबा भी है और शायद थोड़ा चौंकाने वाला भी।
हाँ बिल्कुल, इसमें वो अपने शहर कॉनकॉर्ड के लोगों की अच्छी खासी आलोचना करते हैं।
क्या कहते हैं वो?
वो कहते हैं कि ये लोग घर, जमीन, कपड़ों, फैशन, इन चीजों के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, गुलाम बन जाते हैं।
और फिर वो अपना हिसाब देते हैं।
हाँ, वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने सिर्फ $28.12 उस जमाने के हिसाब से मैं अपनी पूरी कुटिया बना ली, और कैसे वो बहुत कम मेहनत करके अपना गुजारा चला लेते थे।
उनका तर्क बहुत सीधा है। वो कहते हैं हमारी जो बुनियादी जरूरतें हैं, खाना, कपड़ा, मकान, ईंधन, वो बहुत कम है,
और ज्यादातर चीजें जिनके पीछे हम भागते हैं वो गैर जरूरी हैं।
और धीरे धीरे वो चीजें हम पर बोझ बन जाती हैं, हमारी आजादी छीन लेती हैं।
सोचिए आज के जमाने में ये बात कितनी सच लगती है। EMI, लोन, क्रेडिट कार्ड, इन सबके बोझ तले।
बिल्कुल, और यही उनका वो सादगी वाला सिद्धांत आता है, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई।
हाँ, वो कहते हैं कि अपने आर्थिक जीवन को सरल बनाओ, तभी असली स्वतंत्रता मिलेगी।
किस चीज की स्वतंत्रता?
समय की स्वतंत्रता, सोचने की स्वतंत्रता। ये आज जो मिनिमलिज्म या सचेत उपभोग की बातें होती हैं,
हाँ, कॉन्शियस कंजम्पशन,
उसका ये शुरुआती रूप लगता है। खुद से पूछना, क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है या बस मैं इसे चाहता हूँ।
बहुत जरूरी सवाल है। तो इस आर्थिक बुनियाद के बाद वो आते हैं किताब के दार्शनिक दिल पर, अध्याय 2, मैं कहाँ रहा और किस लिए जिया, वेयर आई लिव्ड एंड व्हाट आई लिव्ड फॉर।
यहीं पर उनकी वो मशहूर लाइनें हैं, मैं जंगल में इसलिए गया क्योंकि मैं जानबूझकर जीना चाहता था।
आई वेंट टू द वुड्स बिकॉज आई विश टू लिव डिलिबरेटली। जानबूझकर जीना, क्या मतलब है इसका आपकी नजर में?
मेरे ख्याल से मतलब है इरादे के साथ जीना, होश में जीना, हर पल को पूरी तरह महसूस करना, जिंदगी की जो असलियत है चाहे अच्छी हो या बुरी उसका सामना करना, भागना नहीं।
ज्यादातर लोग तो जैसे ऑटो पायलट पर जीते हैं, सुबह उठना, काम पर जाना, घर आना, टीवी देखना, सो जाना, एक रूटीन।
थॉरो कहते हैं इस रूटीन से जागो, वर्तमान में जियो, लिव इन द मोमेंट।
और यही वो कहते हैं सरल बनाओ, सरल बनाओ, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई।
अपनी जिंदगी से फालतू चीजें हटाओ, फालतू काम हटाओ, फालतू चिंताएं हटाओ।
दिलचस्प बात यह है कि वो उस जमाने में भी डाकघर और अखबारों की आलोचना कर रहे थे। कहते थे ये हमें बेकार की जानकारी से भर देते हैं, हमारा ध्यान भटकाते हैं।
हाँ, सोचिए अगर आज वो होते और सोशल मीडिया 24/7 न्यूज देखते तो क्या कहते?
शायद यही कहते, भैया अपना डिजिटल डिटॉक्स करो, थोड़ा रुको, सांस लो,
अपना ध्यान वापस अपनी जिंदगी पर लाओ, अपने आसपास की दुनिया पर।
और इसी से जुड़ा है उनका अगला जरूरी अध्याय, ध्वनियां यानी साउंड्स।
ये बड़ा प्यारा अध्याय है, ये हमें सचमुच सुनना सिखाता है।
हम दिन भर कितनी आवाजों से घिरे रहते हैं, पर ध्यान कितनों पर जाता है?
सही बात है। थॉरो जंगल में बैठकर हवा की सरसराहट, पानी की आवाज, चिड़ियों का चहकना, यहाँ तक कि दूर से आती ट्रेन की सीटी को भी इतने ध्यान से सुनते हैं और उसमें भी अर्थ ढूंढते हैं।
ट्रेन की आवाज वो उस वक्त के बदलते हुए औद्योगिक समाज का प्रतीक थी, लेकिन थॉरो उसमें भी एक तरह की जंगली ऊर्जा, एक शक्ति महसूस करते हैं।
ये एक तरह से माइंडफुलनेस का पार्ट है, अपने आसपास के माहौल के प्रति सचेत रहो, अपनी इंद्रियों को खुला रखो।
बिल्कुल, साधारण चीजों में भी असाधारण अनुभव मिल सकता है अगर हम ध्यान दें तो।
और जैसे बाहर की दुनिया को सुनना जरूरी है, वैसे ही अंदर की आवाज सुनना भी, खासकर जब वो एकांत यानी सॉलिट्यूड पर लिखते हैं।
हाँ, आजकल तो अकेलापन एक बड़ी समस्या माना जाता है, लोनलीनेस इज एन एपिडेमिक कहते हैं, लेकिन थॉरो का नजरिया बहुत अलग था।
वो क्या कहते हैं?
वो कहते हैं कि सिर्फ अकेले होने का मतलब अकेलापन नहीं है, आप भीड़ में भी अकेले हो सकते हैं
और अकेले होकर भी जुड़ावा महसूस कर सकते हैं।
एग्जैक्टली, वो कहते हैं सच्चा अकेलापन तब होता है जब आप खुद से कटे हुए हों, अपनी अंतरात्मा से दूर हों।
वो तो प्रकृति के बीच सबसे ज्यादा कनेक्टेड महसूस करते थे।
हाँ, उनके लिए एकांत डरावना नहीं था बल्कि जरूरी था, आत्मचिंतन के लिए, खुद को बेहतर जानने के लिए।
ये आज के लिए बहुत जरूरी सीख है। हम लगातार बाहरी कनेक्शन ढूंढते रहते हैं, सोशल मीडिया पर लाइक्स, कॉमेंट्स,
हाँ, वैलिडेशन।
शायद हमें भी कभी कभी इस शोर से दूर सिर्फ अपने साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए।
बिल्कुल, और थॉरो का जीवन सिर्फ सोचने या प्रकृति को देखने तक ही सीमित नहीं था, वो काम भी करते थे, मेहनत करते थे।
हाँ, वो सेम का खेत वाला अध्याय, द बीन फील्ड, उसमें वो अपने सेम उगाने का अनुभव बताते हैं।
और ये उनके लिए सिर्फ खेती नहीं थी, पैसा कमाना मकसद नहीं था।
नहीं, वो इसे एक आध्यात्मिक अभ्यास की तरह देखते थे, जैसे खेत की निराई करना, मतलब मन से बुरे या फालतू विचारों को निकालना।
मिट्टी के साथ काम करते हुए धैर्य सीखना, मेहनत का मूल्य समझना, प्रकृति के नियमों को जानना।
तो शारीरिक काम भी एक तरह का ध्यान बन सकता है, मेडिटेशन, अगर उसे सही नजरिए से किया जाए।
बिल्कुल, ये हमें अपने रोजमर्रा के काम को भी ज्यादा सम्मान और गहराई से देखने की प्रेरणा देता है। क्या हम सिर्फ नतीजे के पीछे भाग रहे हैं या प्रक्रिया को भी जी रहे हैं?
अच्छा पॉइंट है। फिर वो एक और गहरे विषय पर आते हैं, उच्च नियम या हायर लॉज।
यहाँ वो इंसान के अंदर चलने वाले संघर्ष की बात करते हैं, हमारी जो पार्श्विक प्रवृत्तियां हैं, एनिमल इंस्टिंक्ट्स,
और हमारी जो आध्यात्मिक आकांक्षाएं हैं, स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस।
इन दोनों के बीच का द्वंद्व। वो कहते हैं कि हमें सचेत रूप से कोशिश करके अपने अंदर की अच्छाई, अपनी दिव्यता को पोषित करना चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए।
और इसके लिए वो आत्मानुशासन पर जोर देते हैं, जैसे उन्होंने शाकाहार अपनाया था।
हाँ, पर ये सिर्फ खाने की बात नहीं थी, ये अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाने का एक तरीका था, एक उच्चतर चेतना की तरफ बढ़ने का प्रयास।
और फिर जैसे जैसे किताब अंत की ओर बढ़ती है, मौसम भी बदलता है। अध्याय 17, वसंत, स्प्रिंग आता है। ये बहुत ही सुंदर और उम्मीद भरा अध्याय है।
हाँ, इसमें वॉल्डन तालाब पर जो बर्फ जमी होती है, उसके पिघलने का और जंगल में फिर से नए जीवन के आने का बहुत ही काव्यात्मक वर्णन है।
ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है ना?
नहीं, ये एक शक्तिशाली प्रतीक है, पुनर्जन्म का, नई शुरुआत का, रीबर्थ, रिन्यूअल। जैसे प्रकृति लंबी सर्दी के बाद जाग उठती है, वैसे ही इंसान भी अपनी सुस्ती, अपनी जड़ता, समाज के बंधनों की नींद से जाग सकता है।
क्या बात है। और अंत में आता है निष्कर्ष, कंक्लूजन। यहाँ थॉरो अपने पूरे प्रयोग का सार समेटते हैं, लेकिन एक दिलचस्प बात है।
क्या?
वो ये नहीं कहते कि सब लोग मेरी तरह करो, जाओ जंगल में रहो।
नहीं, बिल्कुल नहीं कहते। वो कहते हैं अपना रास्ता खुद ढूंढो, मेरी नकल मत करो, पर मेरे अनुभव से सीखो, प्रेरणा लो।
और यही वो अपनी वो कमाल की बात कहते हैं, अगर कोई इंसान अपने साथियों के साथ कदम मिलाकर नहीं चल पा रहा है, तो शायद इसलिए कि वो एक अलग ढोलकिया सुन रहा है।
वाह, क्या लाइन है ये। इंडिविजुअलिज्म अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का कितना जबरदस्त आह्वान है।
अपनी धुन पर चलो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे।
बिल्कुल। तो इन सभी अध्याय और विचारों से गुजरते हुए कुछ खास बातें हैं जो बार बार सामने आती हैं। मेरे ख्याल से सबसे पहली और सबसे अहम है सादगी। सिंप्लिसिटी इज द पाथ टू फ्रीडम।
हाँ, सादगी में ही असली आजादी है। और ये सिर्फ चीजों की सादगी में ही है
नहीं, विचारों की, रिश्तों की, जीवन शैली की, हर चीज की सादगी।
भारत में जहाँ अक्सर इतना सामाजिक दबाव होता है, शादी ब्याह में खर्चा, त्योहारों पर दिखावा, रोजमर्रा में भी।
हाँ बिल्कुल।
वहाँ ये विचार कितनी राहत दे सकता है। कम चीजें मतलब कम चिंता, ज्यादा सुकून, ज्यादा समय।
सही कहा। दूसरा बड़ा संदेश है आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस।
और ये भी सिर्फ पैसे की बात नहीं है।
नहीं, ये मानसिक और आध्यात्मिक आत्मनिर्भरता भी है। दूसरों की राय या समाज के बनाए ढर्रे पर आंख बंद करके चलने के बजाय अपने विवेक, अपने अनुभव पर भरोसा करना,
अपनी अंदर की आवाज सुनना। ये करियर चुनने में, लाइफ पार्टनर चुनने में, या कोई भी बड़ा फैसला लेने में कितना जरूरी है, भले ही वो आवाज दूसरों से अलग क्यों ना हो।
बिल्कुल। तीसरा अहम थीम है प्रकृति। प्रकृति सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, या सिर्फ हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं है।
वो एक शिक्षक है, एक हीलर है, ईश्वर का रूप है।
और उससे जुड़ना हमारी रूहानी सेहत के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है।
और शहरों में रहते हुए भी ये मुमकिन है। बालकनी में पौधे लगाना, पार्क में टहलना, आसमान को देखना, बारिश की आवाज सुनना, छोटे छोटे तरीके हैं।
हाँ, ध्यान देना जरूरी है। चौथा, थॉरो उस चीज पर सवाल उठाते हैं जिसे हम प्रगति,
प्रोग्रेस कहते हैं।
हाँ, वो औद्योगिक क्रांति के शुरू में ही पूछ रहे थे, क्या ये मशीनें, ये भागदौड़, ये तथाकथित विकास हमें सच में ज्यादा खुश, ज्यादा बेहतर इंसान बना रहे?
उनकी उपभोक्तावाद की आलोचना तो आज और भी ज्यादा सटीक लगती है।
क्या अगला फोन मॉडल या नई गाड़ी वाकई जिंदगी को बेहतर बनाएगी, या ये बस एक और बोझ है जिसे हम ढोएंगे? ये सवाल वो हमसे पूछते हैं।
और आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी बात, जागना, होश में आना, पूरी तरह से वर्तमान क्षण में जीना, अवेयर होना।
हाँ, अवलोकन का महत्व, अपने आसपास की दुनिया को, अपने अंदर की दुनिया को ध्यान से देखना, सुनना, महसूस करना।
वो कहते थे, ज्यादातर लोग आध्यात्मिक रूप से सोए हुए हैं। हमें रोजमर्रा की साधारण चीजों में असाधारण सौंदर्य खोजना सीखना होगा।
हाँ बिल्कुल, जैसे वो पहली ही लाइन, अधिकतर लोग शांत हताशा का जीवन जीते हैं। The mass of men lead lives of quiet desperation.
ये सुनने में ही कितना भारी लगता है। मतलब ज्यादातर लोग अंदर से खुश नहीं हैं, पर कहते नहीं, बस घुटते रहते हैं।
और ये आज भी उतना ही सच लगता है शायद। सोशल मीडिया पर सब कितने खुश दिखते हैं, पर असलियत
कौन जाने। और वो वाक्य जो उनके पूरे प्रयोग का मकसद बताता है, मैं जंगल में इसलिए गया क्योंकि मैं जान बूझ कर जीना चाहता था।
I went to the woods because I wished to live deliberately. जिंदगी को पूरी चेतना, पूरे इरादे के साथ जीना, ऑटो पायलट मोड से बाहर आना।
उनका प्रैक्टिकल मंत्र, सरल बनाओ सरल बनाओ।
सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई, दो शब्दों में पूरी फिलॉसफी है। चीजें कम, उलझने कम, शांति ज्यादा।
और मेरा सबसे पसंदीदा, यदि कोई व्यक्ति अपने साथियों के साथ कदम नहीं मिलाता है तो शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक अलग ढोलकिया सुन रहा है।
If a man does not keep pace with his companions, perhaps it is because he hears a different drama.
अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करना,
हाँ,
अपनी धुन पर चलना, भीड़ के पीछे नहीं।
कमाल है।
तो ये सब गहरी बातें हैं, लेकिन सवाल वही है, इन्हें हम अपनी आज की भागदौड़ भरी शहरी जिंदगी में कैसे उतारें? जंगल जाना तो सबके बस की बात नहीं।
सही कहा। और शायद थोरो का मतलब भी जगह बदलने से ज्यादा नजरिया बदलना था, माइंडसेट शिफ्ट।
तो क्या कर सकते हैं हम?
जैसे हम न्यूनतम बात को थोड़ा अपना सकते हैं। खरीदने से पहले सोचना, क्या ये वाकई जरूरी है या बस इच्छा है।
घर से और शायद दिमाग से भी फालतू चीजें हटाना, डीक्लटरिंग।
बिल्कुल। और डिजिटल डिटॉक्स तो आपने पहले भी कहा था, आज की जरूरत है ये।
हाँ, दिन का कुछ समय स्क्रीन से दूर, सोशल मीडिया का इस्तेमाल थोड़ा सोच समझ कर करना, अपने आसपास की असली दुनिया पर ध्यान देना।
सफलता की अपनी परिभाषा बनाना भी जरूरी है। क्या सिर्फ पैसा और पद ही सफलता है?
या मन की शांति, अपने शौक पूरे करने का समय, परिवार के साथ वक्त, सार्थक काम, ये ज्यादा जरूरी है।
हाँ, अपनी प्रायोरिटीज तय करना और प्रकृति से जुड़ने के तरीके ढूंढना, चाहे वो कितने ही छोटे क्यों ना हो।
बालकनी में एक पौधा लगाना या बस खिड़की से बाहर देखना और मौसम को महसूस करना।
और सबसे जरूरी शायद एकांत और आत्मचिंतन के लिए थोड़ा समय निकालना, रोज बस 10-15 मिनट।
चुपचाप बैठना, अपने विचारों को देखना या शायद कुछ लिखना, जर्नलिंग करना।
हाँ, ये हमें खुद से जोड़े रखता है, इस भागदौड़ में खोने नहीं देता।
तो कुल मिलाकर वॉल्डन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक नजरिया है, एक दर्शन है और एक चुनौती भी है। आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही इस किताब से?
मेरे लिए शायद ये कि सच्ची दौलत बाहर नहीं, अंदर है। अनुभवों में है, रिश्तों में है, प्रकृति के साथ जुड़ाव में है, और सबसे बढ़कर खुद के प्रति ईमानदार होने की, अपनी शर्तों पर जीने की आजादी में है। जिंदगी सिर्फ काटनी नहीं है, जीनी है पूरी तरह से, जानबूझकर।
और मेरे लिए ये कि हम सब अपना वॉल्डन ढूंढ सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो कोई तालाब का किनारा हो, वो कोई जगह हो सकती है या मन की एक अवस्था हो सकती है, एक स्पेस जहां हम बाहरी शोर से थोड़ा हटकर अपनी अंदर की आवाज सुन सकें और उसके हिसाब से जीने की हिम्मत कर सकें। ये किताब हमें याद दिलाती है कि जिंदगी को ज्यादा सरल, ज्यादा सच्चा और ज्यादा सार्थक बनाना हमारे अपने हाथ में है।
बिल्कुल। और शायद यही सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए भी छोड़ सकते हैं, उनकी जिंदगी का वॉल्डन क्या है, वो और जानबूझकर और होशपूर्वक कैसे जी सकते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।